धौला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 19 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिनेन म्यूं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमु। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना खंड, और उसमें अभी हम वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के पश्चात जो चूलिका है उसमें से दूसरी चूलिका देख रहे हैं। 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 121 पर हम आए हैं, परंतु काल जो हमने पढ़ा सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। तेजल कहते हमको कुछ नहीं समझा, हमको भी कुछ नहीं समझा इसलिए नींद भी नहीं आई क्योंकि यहाँ जो कुछ स्पर्धक की बात, हम हमेशा वो स्पर्धक वर्ग वर्गणा योग स्थानों में बात अलग है और अनुभाग स्थानों में बात अलग है। अनुभाग स्थान किसको कहना वो तो अभी हम पक्का हमको याद हो गया। क्या कहा, अनुभाग स्थान किसको कहते
हैं?
अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग को यानी उसके अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद को हम अनुभाग स्थान कहते हैं। और हम जो सब बाकी जो स्पर्धक की वगैरह वगैरह बात कर रहे थे वहां तो रेगुलर स्पर्धक की रचना को देख रहे थे, तो इसलिए कल कोई अर्थ उसका भाषित नहीं हो रहा था। हम दोबारा 118 पेज से वहां चलेंगे। 118 पर जघन्य स्थान तो समझ में आई सबको, जघन्य स्थान अभी ज्ञानावरण में अनुभाग का जघन्य स्थान ले रहे हैं, वो कहाँ होगा? असूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, बराबर है। वो जघन्य स्थान से दूसरा अजघन्य स्थान कितना होगा? तो अनंत गुणा अधिक वाला होगा, एक समय पूर्व का, वहां जो बंद हुआ था उसकी बात है। अब उसमें भी वो वर्ग वर्गणा सब बंदेगी, पर अनुभाग स्थान किसको कहेंगे? वही अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद को। और स्पर्धक किसको कहना? हाँ अश्विन भाई,
एक एक अनुभाग से बढ़ते हुए वर्गणा,
हाँ यानी जहाँ क्रम वृद्धि होती है ऐसे वो पूरे जो ग्रुप को हम कहेंगे वो स्पर्धक। पर स्पर्धक का अनुभाग हम कैसे गिनेंगे?
अंतिम, अरे स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक वर्ग में जो अनुभाग है
उसको कहना है उसको स्पर्धक कहना। हम पूरे पूरी वर्गणाओं को ले रहे थे और फिर स्पर्धकांतर किसको कहते हैं? हम
यहाँ पे ये जो 118 पेज पे पैराग्राफ है ना उसमें लिखा है इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम कर देने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है।
क्या कहते हैं स्थानों का अंतर किसको कहेंगे? जैसे पहला जो स्थान था अनुभाग का बंद अंतिम जो वर्ग में कितना था? तो 10,000 था, और ऊपर कितना हुआ? तो 50,000 हुआ, पूरे समय में 50 हुआ, तो अंतर कितना हुआ?
40,000।
हाँ, यह क्या लिखा है?
41,000 बता रहे हैं।
41,000 नहीं,
39,000।
अरे आप 1,000 बढ़ा रहे हैं
40,000।
दोनों का अंतर का अर्थ देखो, 1,000 छोड़ दो, दोनों का अंतर कैसे? हाँ, 40 पे लिखेंगे
50,000 तो
में आ जाएगा
10,000।
अभी 1,000 को छोड़ देते हैं, हम सादा उदाहरण लेते हैं। चार, यहाँ का किसी का 4 है अनुभाग और यहाँ 10 है, तो अंतर कितना हुआ? 4 को भी छोड़ो, 10 को भी छोड़ो, 5, 6, 7, 8, 9,
5 का अंतर
समझ में आई बात? यही है कह रहे, देखो क्या कहा है यहाँ, पेज नंबर 118 निकालो। इस जघन्य स्थान को, नया पैराग्राफ, सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर सूक्ष्म सांप्रायिक के द्विचरम समय में बांधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। ये बात ख्याल में आई? मान लेते वहां अंतिम अनुभाग, अंतिम स्पर्धक के अंतिम चार था और यहाँ दस हो गया, दस हो गया कहो या चालीस हो गया कहो, ये क्या हुआ? अनंत गुणा हुआ, अनुभाग का स्थान बढ़ा। अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में इतना अनुभाग है, तो कि इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। अंतर यानी दोनों को छोड़ना, दस को भी छोड़ो चार को भी छोड़ो, बीच में कितने आ गए? दस माइनस चार छः होते, माइनस एक पाँच। जब हम स्थानों की संख्या लेते वो तो अलग, उसमें प्लस वन करते थे, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, वहां हमें नंबर ऑफ स्थान देखने थे, यहाँ स्थानों के अंतर देख रहे हैं। समझ में आई बात? ये यानी आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है।
मैं ये पढ़ा तो
सुबह मैं जयदोला लेकर बैठ गई आपके में। अंतर अंतर अभी अभी चार और दस मत लो, चार और चालीस ले लो ना, तो डिफरेंस कितना हुआ? चालीस माइनस चार माइनस एक, पैंतीस हो गया। चार को भी छोड़ो चालीस को भी छोड़ो, ये हो गया अंतर का प्रमाण।
सो यहाँ पे अंतर अनंत गुणा हो जाएगा।
देखो यहाँ क्या, इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम, दोनों का अंतर होता है, और वो कितना होता है? सब जीवों के अनंत गुणा।
हाँ।
ये अंतर हुआ, समझ में आई बात? द्वितीय स्थान का प्रमाण हुआ, अनंत गुणा वो प्रमाण हुआ, तो अनंत में अनंत वा भाग कम करके एक और कम कर दो, इतना अंतर हुआ। यहाँ तो समझ में आई बात?
हाँ।
अभी आगे, इनमें से जघन्य स्थान को घटाने पर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, अभी वृद्धि स्पर्धक है ना, उसमें कितने स्पर्धक बने हैं? यहाँ स्पर्धक, नंबर ऑफ स्पर्धक कितने बने, उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक, क्योंकि एक एक स्पर्धक जो है हमने कैसे देखे थे उसमें समान समान, अभी स्पर्धक किसको कहना, तो स्पर्धक कहेंगे हम
क्रम से
बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद होते उसमें, तो पहली वर्गणा का एक एक वर्ग लेना, जैसे हमने 100, 101, 102, 103, 103 तक देखे थे, तो 103 को हम स्पर्धक कहेंगे,
103 को स्पर्धक कहेंगे,
क्योंकि स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको ही पूरा स्पर्धक नाम है। स्थान नाम किसको दिया?
स्थान तो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्ग के
स्थान, क्योंकि एक स्थान में अनंत स्पर्धक होते हैं, तो स्थान किसको कहेंगे? अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको स्थान कहा। स्पर्धक किसको कहेंगे? उस स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अनुभाग है उसको स्पर्धक कहेंगे। इसलिए कल ये गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। अब देखो जितने वहां, अभी हम चार और चालीस का प्रमाण लेके देखते हैं, या चार और इकतालीस ले लो, डिफरेंस चालीस है, हमको करने में आसान होगा, तो ये चार नहीं, ठीक है हम चालीस लेते। यहाँ का जो अनुभाग है, यहाँ क्या लिखा देखो, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर, वृद्धिंगत अनुभाग यानी वो चालीस है, पर वृद्धिंगत कितना हुआ? चार से चालीस में कितना जो डिफरेंस है वो वृद्धिंगत अनुभाग है। अब वृद्धिंगत अनुभाग को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर उसको समखंड करके देने पर, इसमें कितना बढ़ा? ये बढ़ा तो उसमें स्पर्धक एक्स्ट्रा कितने तैयार हुए, इसको वृद्धि स्पर्धक कहेंगे। उस समय जो बंद हुआ है कितना हुआ है? चालीस अनुभाग वाला बंद हुआ है, पर उसमें इसके जो चार, यहाँ मान लेते ना चार स्पर्धक बने और इसमें जो कुछ अधिक बने, स्पर्धक अधिक बने, तो यहाँ से वो जो एक लॉट बंधा है उसमें यहाँ से लेकर तो यहाँ तो जितने उसके जो बने तो उतने बने ही बने हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितने बने हैं उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक। उसके टोटल स्पर्धक कहाँ से गिनेंगे? नंबर एक से लेकर ऊपर तक, क्योंकि जैसे इस चार को एक से चार तक गिना, इसे 140 तक गिनेंगे, ये उसका अर्थ होता है।
पर ऊपर हमने देखा कि अनुभाग की अपेक्षा अंतर देखा, और यहाँ पे अभी स्पर्धक की कोई स्पर्धकों की अपेक्षा अंतर देख रहे हैं।
देखो देखो अभी अंतर स्पर्धकों का नहीं बात आई है, अभी तो इतने उसमें स्पर्धक कितने बनते हैं, यानी वो स्पर्धक का प्रमाण कैसा निकालना, एक स्पर्धक का प्रमाण कैसा निकालना, एक स्पर्धक का प्रमाण निकाल रहे,
एक स्पर्धक का अनुभाग का प्रमाण निकाल,
अनुभाग उसको स्पर्धक कहेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल क्या था, 100 से लगा 103, दूसरा स्पर्धक 203, तीसरा स्पर्धक 303, 403, तो फिक्स डिफरेंस है ना सब में, 100-100 का डिफरेंस है या 100-99 का डिफरेंस मान लो ना, दोनों को माइनस करो यानी 103 भी छोड़ो और 203 भी छोड़ो, बीच में अंतर कितना हुआ, 99 का अंतर हुआ, ख्याल में आती है ना, ये स्पर्धा का अंतर, इसको कहेंगे स्पर्धा का अंतर।
अच्छा मैं सोच रहा था उत्कृष्ट स्पर्धक
बना। नहीं 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 नहीं, ये अभी अभी इस पद्धति से अर्थ लेकर ही हमको सोचना है। स्पर्धकांतर का अर्थ होता है एक स्पर्धक की जो उत्कृष्ट वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद है और दूसरे स्पर्धक की, किसी एक स्थान में स्पर्धकांतर सेम है, परंतु हम अभी जघन्य स्थान से ऊपर गए तो वहां स्पर्धकांतर बदलेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ मान लेते यहाँ 99-99 था, ऊपर कुछ अलग, ये कहते ये कैसे होगा, तो वो स्पर्धक नंबर ऑफ स्पर्धक कितने बने, यहाँ जितने नंबर ऑफ स्पर्धक बने और अनुभाग कितना बढ़ा, यानी अनुभाग की वृद्धि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पर्धक, वृद्धि स्पर्धक कहेंगे उसको, तो वहां एक स्पर्धक का प्रमाण मिलेगा हमको। मान लेते हैं ना यहाँ स्पर्धक का प्रमाण 103 मान लेते हैं, वहां कुछ हजार में कुछ और हो सकता है, तो उसके प्रतिस्पर्धक उतना उतना बढ़ेगा। हाँ, जब अनंत गुणा हुआ है ना, अनंत गुणा है तो यहाँ अंतर भी बढ़ेगा। अभी इस अर्थ को लेकर हम
देखेंगे, प्रति सब अनुपात का पलटना होता होगा।
देखो अभी एक ही पर्टिकुलर स्थान की बात चल रही है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि प्रति सब स्पर्धक अंतर अलग अलग हो जाएगा।
हाँ, जब अनंत गुणा है तो प्रति में अलग अलग होगा, अनंत भाग जब, हाँ अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, उसमें अंतर डिफरेंट होगा।
हाँ, उसमें छोटा होगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। अभी बताना,
अभी वो बाद में आएंगे, अभी तो अंतर किसको कहना पहले ये समझ लो, ये सारे हम फिर दोबारा पढ़ने वाले हैं कल के बाद, समझ में आया, अंतर किसको कहना ये हम नक्की करेंगे। एक स्पर्धक की उत्कृष्ट वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की उत्कृष्ट, मैंने स्पर्धक ही किसको कहेंगे, तो अंतिम जो उसका, क्योंकि उसके बाद उसमें अंतर पड़ा था, स्पर्धक कहाँ तक कहा, ये इतने लॉट वर्गणाओं के उसको स्पर्धक कहा, उसके बाद बीच में अंतर पड़ा, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ, पर उसके नीचे की वर्गणा को अंतर नहीं कहना यहाँ पर। स्पर्धक किसको कहा, उत्कृष्ट अनुभाग को, दूसरा स्पर्धक नाम किसको कहेंगे, वहां के उत्कृष्ट अनुभाग को, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट के बीच में जो है उसको अंतर कहेंगे, उतना ही अंतर जघन्य और जघन्य के बीच में, पर स्पर्धक हम उत्कृष्ट को कह रहे हैं। यहाँ तक समझ में आई बात, नहीं आई?
नहीं नहीं समझ आ गई।
हाँ, आपके प्रश्न अभी गिरवी रखो हमारे पास। अंतिम वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद, एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे हमने स्थान में कैसे देखा, स्पर्धक में यही नियम लागू करो, यानी सर्वत्र जो स्पर्धक संज्ञा होगी, वर्गणा को भी, पूरी वर्गणा किसको कहेंगे, वर्गणा के एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद उसको वर्गणा कहेंगे। ये अनुभाग स्थानों की भाषा ही जुदी है, समझने के लिए फिर हमने इतने अनंत स्पर्धक होते वगैरह बात की थी, परंतु अभी यहां से फिर पढ़ेंगे समझेंगे। देखो तीसरी लाइन है उसमें, दोनों का अंतर कितने अनुभाग का वो हमने देखा, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का, यानी यहाँ देखो अभी जो नया बंध हुआ, परमाणु का जो एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया, तो उसकी इसके समान जो अनुभाग वाले हैं उसकी तो रचना इसी रखना, उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा स्पर्धक बढ़े हैं उसकी रचना भी करना, तो इसके समान वाले तो यहाँ तक हो गए। अभी हाँ, उसके उस समय प्रबद्ध में से यहाँ जितना ऐसा हो, पहले चार स्पर्धक तो वैसे बनाए, मान लेते ऊपर और 10 स्पर्धक 12 स्पर्धक जितने बने उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक। अब मान लेते यहाँ 10 स्पर्धक बने और यहाँ तो अनुभाग 400 हुआ, वृद्धि का अनुभाग
40,
हम कुछ भी अनक सम, वृद्धि 400 हुई और उसमें स्पर्धक 10 बने, तो एक एक स्पर्धक में कितना हुआ, 40-40 हुआ। उसका अर्थ क्या है, यहाँ जो अंतिम, जो यहाँ का स्थान था अंतिम स्थान, उसको अंतिम स्पर्धक कह सकते हम, यहाँ का जो अनुभाग स्थान है वही अंतिम स्पर्धक था, उसमें यहाँ हमने 40 बढ़ाए और 40 बढ़ाए और 40 बढ़ाए, हर बार वो 40-40 बढ़ाए। पहले कुछ अन्य होगा, यहाँ ये पहले कम था, यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ से 40 बढ़कर ये स्पर्धक हुआ, यहाँ उत्कृष्ट स्थान वाला जो उत्कृष्ट स्पर्धक था उसमें 40 बढ़कर ये स्थान हुआ, डिफरेंस कितना हुआ 39 का, उससे 40 बढ़कर दूसरा, उनमें भी डिफरेंस 39 का, क्योंकि 40 से 80 हुआ तो डिफरेंस 39 का हुआ। समझ में आती है बात, इस तरह से यहाँ से यहाँ जितना डिफरेंस है उसका दूसरे तीसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवे में डिफरेंस है, ये कल हमने सब पढ़ा था। अभी शुरुआत से फिर पढ़ते हैं, देखो फिर से दोबारा तीसरी लाइन, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, मान लेते ना 10 स्पर्धक एक्स्ट्रा बने, ये एक्स्ट्रा वृद्धि स्पर्धक है ना, एक्स्ट्रा कितने स्पर्धक बने, क्योंकि जो नया बंध होगा अनंत गुणा वृद्धि वाला हुआ है, तो उसमें जो स्पर्धकों का कहाँ से हम गिनेंगे, जघन्य से लेकर, यानी पूर्व में जितने स्थान थे उसको जघन्य के जितने स्पर्धक थे उतने तो स्पर्धक इसमें बने ही बने और एडिशनल बने, क्योंकि हम ये वृद्धि वाला स्थान देख रहे हैं, ख्याल में आती है ये बात, तो ये वृद्धि वाला स्थान देख रहे हैं हम, तो उसमें इतने स्पर्धक एक्स्ट्रा बने उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक, एक्स्ट्रा स्पर्धक। तो वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का, उसके जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्धक उसको हम कहेंगे अभी अपनी भाषा में। वृद्धि स्पर्धक शलाका का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा
स्पर्धक बने
उस बंध स्थान में। उसका विरलन करना, यानी जो एक्स्ट्रा स्पर्धक हुए उसके विरलन करना, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर, जो अंतिम जो पहले जघन्य स्थान का जो अंतिम अनुभाग वाला था और अभी जो अंतिम हुआ उसमें जो डिफरेंस है तो उसको कहेंगे अनुभाग की वृद्धि, वो वृद्धि अनुभाग, और ये था वृद्धि स्पर्धक शला का। तो जो अनुभाग जो बढ़ा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वहां के एक्स्ट्रा स्पर्धक, तो हमें एक स्पर्धक की वैल्यू मिलेगी, यहाँ के एक स्पर्धक की वैल्यू मिलेगी। तो कहते वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, यानी एक एक स्पर्धक में कितना प्रमाण है उसका प्रमाण मिलेगा।
तो यहाँ पे स्पर्धकों के वर्ग का जो प्रमाण जो बढ़ रहा है वो बता रहे
हैं,
एक स्पर्धक में वर्गणा का प्रमाण है वो
वर्गणा का प्रमाण नहीं बताएंगे, वहाँ का अनुभाग बताएंगे उसमें कितना अनुभाग है। मान लेते हैं ना कि 10,000 से एकदम लाख हो गया, 10,000 था अनुभाग और लाख हुआ और उसमें 10 स्पर्धक बने, तो 10,000 का लाख हुआ नहीं, कितना डिफरेंस हुआ उसमें, 90,000 हुआ और उसमें 10 स्पर्धक बने, तो 9,000 होगी ना एक की वैल्यू, तो जो अंतिम था उसमें 9,000 बढ़कर यहाँ का स्पर्धक हुआ, उसमें 9,000 बढ़कर दूसरा स्पर्धक, उसमें 9,000 बढ़कर तीसरा स्पर्धक, उसमें 9,000 बढ़कर चौथा, ऐसे 10 स्पर्धक हुए। ख्याल में यही बात है।
So, यहाँ पे जो जघन्य स्थान में जो स्पर्धक,
जघन्य स्थान में जो अंतिम स्पर्धक की वैल्यू 10,000 मानी थी हम,
हाँ।
उसमें 9,000 बढ़े तो यहाँ 19,000 हो गए,
नहीं तो
19,000 का बढ़कर और 9 बढ़े 28,000 हो गए,
नहीं तो जघन्य स्थान में स्पर्धक का प्रमाण था वो जब भी अनुभाग अनंत गुणा बढ़ के हुआ
स्पर्धक भी अनंत गुणे हो गए,
तो स्पर्धक तो नीचे के स्थान में भी स्पर्धकों का प्रमाण बढ़ेगा,
नीचे कैसे बढ़ेंगे वो तो उतने ही है ना, वो जघन्य स्थान सदृश वहाँ
वो स्पर्धकों का प्रमाण वो ही रहेगा,
वही रहेगा वहाँ से। देखो देखो जघन्य स्थान में सभी स्पर्धकों का अंतर समान है, अभी जो नया स्थान है वहाँ तो पहले उतना ही उसमें वहाँ पर बढ़कर हो जाएगा ना, वहाँ पर
हाँ, वहाँ पे भी
वहाँ पर बढ़कर
की वैल्यू
बढ़ेगी, इसलिए उसको अवस्थित नहीं कहा। हाँ। ख्याल में आई बात, कल बात आई थी ना कि जघन्य स्थान में सभी स्पर्धक अंतर अवस्थित है, सेम है।
हाँ।
परंतु जहाँ वृद्धि वाली होते हैं वहाँ स्पर्धकों का अंतर भी, नीचे तो सेम था पहले जैसा, अब इसके ऊपर अलग हो जाएगा, अनंत गुणा वृद्धि वाले वहाँ स्पर्धक भी हो जाएगा।
हो जाएगा।
देखो फिर इसको पढ़ते, तो कहते वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, ये स्पर्धक वृद्धियां है क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर, जघन्य स्थान का जो अंतिम स्पर्धक कहो या जघन्य स्थान को, वही बात, उसकी वैल्यू तो सेम थी, इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। जैसे हमने देखा ना, वहां 10,000 था, उसमें 9,000 और ऐड कर दिए तो 19, नहीं 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 डालो, क्योंकि हर बार मैं अलग अलग संदृष्टि बना रही
हूँ। यहाँ पे इसे बताया जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाता है, तो जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक में ही प्रक्षेप होगा कि मेरा क्वेश्चन ये कि नीचे के सभी स्पर्धक का?
ना ना ना, जघन्य स्थान के ऊपर ख्याल में आती है। तो ये स्पर्धक वृद्धियां हैं। पेज नंबर कल से 118 से हम ले रहे हैं, बहुत सारी बातें चली गई हाँ, क्योंकि कल का कंफ्यूजन सब जो था उसी के बारे में चर्चा चली थी हमारी। जैसे हाँ सॉल्यूशन मिल गया थोड़ा सा जो जैसे अंतिम अनुभाग स्थान किसको कहेंगे, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग के अनुभाग को स्पर्धक किसको कहेंगे, एक स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अनुभाग है उसको स्पर्धक कहेंगे।
नहीं, क्योंकि मैं अभी तक ऐसे समझ रहा था कि स्पर्धक अंतर तो हमेशा समान रहेगा,
स्पर्धक अंतर एक स्थान में समान रहेगा, परंतु अभी जो दूसरा स्थान है वो अनंत गुणा वृद्धि का स्थान है, तो उसमें वो बताया था जघन्य स्थान को छोड़कर बाकी सब में अनवस्थित होता है। हमने पढ़ा नहीं, वाक्य पढ़ा था ना?
हाँ,
देखो देखो उसका अर्थ नहीं लगा था तुम्हें?
हाँ, कल मालूम नहीं पढ़ा था।
हाँ, देखो देखो ये स्पर्धक किसको कहेंगे, तो एक स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का जो अभिभाग प्रतिच्छेद है, वर्गणा कहने एक वर्ग का, उसको स्पर्धक कहेंगे। एक ही परमाणु को हमने अनुभाग स्थान कहा था, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद को। अब ऐसे एक ही परमाणु के अभिभाग प्रतिच्छेदों को हम स्पर्धक कह रहे, उसी को नहीं, प्रत्येक स्पर्धक का अंतिम।
ये 120 पृष्ठ पे है, ये दूसरा पैराग्राफ है ना, उसके अंत में बताया 120 नंबर का पेज। तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी उपरिम स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा है।
हाँ, यानी 120 पेज निकालो, अंतर कब कहेंगे? अभी तो इसी की हमारी चर्चा चली थी, स्पर्धक किसको कहेंगे, तो एक स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो एक वर्ग में अनुभाग है उसी को स्पर्धक कहेंगे। नहीं, वो योग स्थान जैसा हम सोच रहे थे, योग स्थान में और अनुभाग स्थान में जैसा डिफरेंस है वैसे योग के स्पर्धक और इसमें स्पर्धक में अंतर है। हाँ, 103 को स्पर्धक संज्ञा दे दी, यानी स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों को स्पर्धक कहेंगे। हाँ, अभी अनुभाग को या अविभाग प्रतिच्छेद को ना, अनुभाग। अभी वर्गणा नाम किसको देंगे?
समान अविभाग वाले अभिभाग,
एक एक वर्गणा में जो एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद है उसको वर्गणा नाम देंगे। जैसे स्पर्धक में मैं इसे कहा वर्गणा का नाम, वर्गणा ने उस वर्गणा के एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद होगा उसको ही पूरी वर्गणा कह देंगे। एक वर्गणा के एक वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद को वर्गणा कहेंगे। फिर से अभी वो शब्द आने वाला है, वर्गणा किसको कहेंगे, एक वर्गणा के कोई भी पर्टिकुलर वर्गणा होगी उसके एक परमाणु, एक परमाणु एक वर्ग,
अविभाग,
यानी एक वर्गणा के एक वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद को वर्गणा कहेंगे। पूरी वर्गणा उसी को कहेंगे, यानी वो वर्गणा के योग में हम कैसे गिनते थे, पर्टिकुलर योग है और उसमें नंबर ऑफ प्रदेश इतने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते थे तब उसको वर्गणा नाम देते थे। अनुभाग स्थान में ये डिफरेंस है। स्पर्धक में जैसे हमने 100 वाली वर्गणा है, उसमें एक एक वर्ग में 100-100 है, वो पूरे वर्गणा को हम 100 कहेंगे, 100, 101, 102, 103, और स्पर्धक को हम 103 कहेंगे, क्योंकि चार वर्गणा है तो अंतिम वर्गणा का जो अविभाग प्रतिच्छेद एक एक का उसको स्पर्धक कहेंगे। बरोबर, और स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक हाँ तो अनुभाग हाँ कहेंगे वर्गणा। देखो वो हमने प्रदेश की जब बात की थी, प्रदेशों का डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमने कहा था कि समान अविभाग वाले परमाणुओं को एक लाइन में लिखेंगे तो उन पूरी उसको वर्गणा कहेंगे। अब यहाँ अनुभाग में अनुभाग कितना है वर्गणा का, तो मान लेते ना एक वर्ग में 100 है और ऐसे 1000 परमाणु हो गए उस वर्गणा में, तो 100 × 1000 उसका अनुभाग नहीं कहेंगे, उसका अनुभाग 100 ही कहेंगे, यानी वर्गणा का अनुभाग भी 100 कहेंगे और वर्ग का अनुभाग भी 100 कहेंगे। अब कहेंगे स्पर्धक में कितना होता है, तो 100 अनुभाग वाले 1000 है, 101 वाले इतने हैं, 200, तो कहते कि 103 तक देखिए, ये सबका अनुभाग की टोटल नहीं करनी है, स्पर्धक का वैल्यू कितनी है तो 103 उसकी स्पर्धक की वैल्यू, ये उसको कहेंगे। हाँ योग वाला कथन अलग है, और जब यानी जो वर्ग वर्गणा स्पर्धक में प्रदेशों की रचना कैसे होती है, परमाणु किस रूप से स्थित है, वो अगर बताना है तो हम उसको सबको अलग अलग बताएंगे, क्योंकि हमको उसमें देखना था कि प्रदेश कम होते चले जाते, जैसे गोपुच्छाकार रचना होती है वर्गणा में प्रदेशों की अपेक्षा, अनुभाग जहाँ जो उसको स्पर्धक किसको कहेंगे, वर्गणा किसको कहेंगे, वर्ग किसको कहेंगे, तो बस एक सिंगल परमाणु की ही उसको संज्ञा है। वो ये घोटाला हो रहा था कल बहुत, समझ में आती है बात,
ये ख्याल में नहीं आया था ना कल के मेरे
कल ख्याल में नहीं आता क्योंकि वो तो बात भूल गए थे
नहीं,
परंतु उसको ऐसा विस्तार से समझाया नहीं है कहीं पर। जयधौला में सुबह 5 बजे उठकर वो जयधौला लेके बैठ, हाँ पांचवा भाग देखो, मैं उसमें से कुछ बातें आपको बताती हूँ जयधौला में से।
मैं तो पढ़ने वाला नहीं, कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते ना।
देखो बाकी बात हम बाद में देखेंगे। देखो
पेज कौन सा है,
पेज नंबर 366 है, 366 पर मैं अभी कुछ पढ़ती हूँ, बाद में और भी आगे पढ़ के दिखाऊंगी। जयधौला की 5वीं पुस्तक है ये। इसी का दूसरा नाम है कषाय प्रावृत्त है, पुस्तक 5। अभी तो मैं पेज 366 पढ़ रही हूँ, बाद में उसके आगे के भी कुछ पेज पढ़ने हैं मुझे। देखो नीचे के अनुभाग स्थान के वर्ग में, अनुभाग स्थान यानी वो नीचे का जो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का एक वर्ग में, तो नीचे के अनुभाग स्थान के वर्ग में जितना अनुभाग है उस अनुभाग के समान अनुभाग वाले सब वर्गों को लेकर उन सबकी नीचे ही रचना करनी चाहिए, क्योंकि नीचे के स्थान से ऊपर की रचना करने के अयोग्य है। यानी जो पहले जो एक समय प्रबद्ध बंधा ये जघन्य स्थान था और ये दूसरा स्थान है, तो यहाँ तक तो उसकी वैसी रचना करनी चाहिए। अब कहते हैं शेष बचे हुए परमाणु की, ये समझ में आई बात,
शेष बचे हुए कौन से परमाणु,
समय प्रबद्ध में से जघन्य स्थान के समान यहाँ तो स्पर्धकों की ऐसी रचना की, शेष बचे परमाणुओं के
नहीं, पर ये एक समय प्रबंध में तो हमने जगदीश स्पर्धक की रचना कर दी, तो वहाँ पे शेष बचे
वो सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय में ये थी, ये पूरा जघन्य स्थान, इतने नंबर ऑफ स्पर्धक थे। अभी हम कहाँ देखते, दूसरा स्थान अनंत गुणा वृद्धि वाला, उसके पूर्व समय का, उस समय भी जो अनंत परमाणु बंधे।
अच्छा, जब द्वितीय समय में जो
हाँ
समय प्रबंध बंधा,
हाँ
उसकी रचना भी
उसकी। अभी उसमें प्रतिवर्गना परमाणुओं का प्रमाण बल अलग होगा, परंतु अनुभव तो उतना ही होगा कि नहीं।
हाँ।
समझ में आती है बात, क्योंकि जितनी पूरी जो यहाँ रचना होनी है उसको तो डेढ़ गुना होने से भाग दे के परमाणु का प्रमाण अलग होगा, तो यहाँ तक अनुभाग की अपेक्षा रचना सेम। जो बच्चे है परमाणु, अब उसकी देखो, शेष बचे हुए परमाणु की उसके ऊपर स्पर्धक रचना करने पर दूसरा स्थान उत्पन्न होता है। ये पहला स्थान यहाँ तक ही था, ये दूसरा स्थान इतना है, तो यहाँ के ऊपर जो प्रदेश रचना की तो ये दूसरा स्थान हुआ। अभी वहाँ उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है कि यहाँ से
मेरा क्वेश्चन वही था कि हाँ। एक समय प्रबंध का लेना है कि दूसरे समय में जो बंदा वो दूसरे समय प्रबंध
दूसरा का। ये पहले तो हो गया, ये अलग हो गया, शायद इसको यहाँ से एक वर्गना को इसके समान रखना है। अभी वो कन्फ्यूजन अभी देखते, देखो पहले में पहले उन्होंने नीचे के अनुभाग स्थान के वर्ग में जितना अनुभाग है उस अनुभाग के समान अनुभाग वाले सब वर्गों को लेकर उन सब की नीचे ही रचना करनी चाहिए, क्योंकि नीचे के स्थान से ऊपर की रचना करने के अयोग्य है, और शेष बचे हुए परमाणुओं की उसके ऊपर स्पर्धक रचना करने पर दूसरा स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले के अनुभाग स्थान की अपेक्षा इस अनुभाग स्थान में यह दूसरा स्थान है। अभी वहां जो जयधवला में जो मोहनी का जघन्य स्थान से दूसरा स्थान बताया वो अनंत भाग वृद्धि वाला था, ज्ञानावरण में जो देख रहे हैं हम सूक्ष्म सांप्रदाय के उपांत समय में वो अनंत गुणा वृद्धि वाला है, थोड़ा डिफरेंस है परंतु जो प्ररूपणा है वो वैसे ही होगी। तो कहते हैं पहले के अनुभाग स्थान की अपेक्षा इस अनुभाग स्थान में पहले के अनुभाग स्थान के सर्व जीव राशि प्रमाण खंडों में से एक खंड प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाए जाते, क्योंकि वहाँ अनंत वा भाग अधिक था, अनंत भाग वृद्धि का स्थान था, क्योंकि मिथ्यात्व का जघन्य बंधक कौन करेगा,
सब सात्विक के सन्मुख, सात्विक के सन्मुख
वो करेगा कि सूक्ष्म निगोद करेगा,
सूक्ष्म निगोद नहीं, वो तो सत्ता की अपेक्षा बात है ना,
यहाँ तो सत्ता की बात है, यहाँ तो सत्ता की बात है,
हम लोग के अभी
विभक्ति की बात है ना,
तो सत्ता में सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त,
हमें उससे लेना देना नहीं है, दूसरे स्थान में क्या होता है उसकी बात है, वहाँ अनंत वहाँ भाग बढ़ा है उस स्थान की यहाँ चर्चा है, परंतु हमें स्पर्धक अंतर क्या होता है ये समझने के लिए काफी है।
नहीं तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जगन्य स्थान में जो अंतर था और उससे अनंत गुणा बट, अभी ये जयदोला कि मैं अपनी बुक की बात कर रहे हैं,
आपकी बुक अभी बात रखो, अभी पहले मैं स्पर्धक और अंतर किसको कहना ये इस पद्धति के पुस्तक के आधार से हम समझेंगे।
नहीं तो विशिष्ट अनुभव का ज्यादा
अभी सुनो, अभी आप सुनो, कल की कंफ्यूजन तो दूर हो रही है कि नहीं रही, अभी दूसरे प्रश्न मत उठाओ, इसको पहले समझने की कोशिश करो कि जो नया स्थान होता है तो उसमें क्या क्या होता है, वृद्धि स्पर्धक किसको कहेंगे, दूसरा अनुभाग स्थान किसको कहेंगे, स्पर्धक अंतर किसको कहेंगे, ये बात इससे क्लियर हो रही है। तो देखो अभी क्या कहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक तो पुस्तकें नहीं है, आपको सुनकर इसको करना है, तो बीच में अभी जो धवला की जो अनंत गुणा वृद्धि वाला जो स्थान है उसको हम बाद में सोचेंगे, यहाँ वाला दूसरा स्थान कौन सा है, अनंत भाग वृद्धि वाला है, तो कहते हैं उसमें से अनंत वा भाग अधिक खंड पाए जाएंगे। उसका खुलासा, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, हमने द्रव्यार्थिक नय ही लगाया था जिसको अनुभाग स्थान कहा था, जघन्य स्थान रूप अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग के यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद के सर्व जीव राशि प्रमाण खंड करके, क्योंकि उससे अनंत का भाग बढ़ा है ना, तो पहले उसके जीव राशि प्रमाण खंड करके उनमें से एक खंड को लेकर, यानी वो वहां का अनुभाग डिवाइडेड बाय जीव राशि, जो एक प्रमाण आया उसको कहेंगे अनंत का भाग, उसको विरलन करना, और उस विरलन राशि के प्रत्येक एक पर जघन्य प्रक्षेप रूप स्पर्धकों की शलाकाओं के समान खंड करके देने पर, यानी मिनी वो जो एडिशनल जो ना जघन्य प्रक्षेप, यानी मिनिमम एडिशन जो की हमने देने, प्रत्येक एक के प्रति जघन्य प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। इसका अर्थ है जितना अनुभाग बढ़ा है, कितना अनंतवा भाग बढ़ा है, तो जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जितने नंबर ऑफ वृद्धि स्पर्धक हुए है उसमें समान बांट दो, तो एक एक स्पर्धक में कितना कितना बढ़ेगा वो कहेंगे। जैसे हमने जो उदाहरण हमेशा रटा था 100 वाला, तो 100-100 से बढ़े थे, क्योंकि 103 से 203 हुआ, 203 से 303 हुआ, 303 से 403 हुआ, वो उसका स्पर्धक का अंतर था कितना, 100 का हो या 99 का, वहाँ का अंतर वो था। अब यहाँ का अंतर भी बढ़ जाएगा ना, यहाँ जितने स्पर्धक बने हैं इसको वृद्धि स्पर्धक कहेंगे। तो कहते हैं प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आए, क्योंकि प्रक्षेप ने एडिशन हुई ना, जो जघन्य स्थान में जो था उससे इतना एडिशन ही हो गया, ये उसका एक स्पर्धक, प्रत्येक स्पर्धक में उतना उतना जाएगा। जैसे हमने कहा पहले, हमने 1000 का उदाहरण लिया था, जघन्य स्थान से 1000 बढ़े, 1000 से और 1000 बढ़े, 2000 हुए, 2000 से 3000 हुए, 3000 से 4000 हुए, तो एक एक स्पर्धक की वैल्यू 1000-1000, वो उतने प्रक्षेप हुआ है ने पूर्व ओरिजिनल में उसको मिलाना है, ये उसको कहते हैं। अब यहाँ आगे में विशेषार्थ बढ़ती 368 पेज पर, वही जयधवला की बात है, अनुभाग विभक्ति का जो प्रकरण है उसमें है। अब कहते हैं अब अनुभाग स्थान की स्पर्धक रचना को बतलाते, स्पर्धक किसी अनुभाग स्थान में स्पर्धक रचना किसको कहना वो यहाँ बता रहे। पहले बतला आया है कि जघन्य स्थान के ऊपर 6 प्रकार की वृद्धियां होती है, वहां मोहनीय में ज्ञानावरणी के जघन्य स्थान के ऊपर अनंत गुणा वृद्धि होगी नीचे अपूर्व करण तक, वो बात अभी भूल जाओ, अभी हम मोहनी की बात करें। 6 प्रकार के अनंत भाग वृद्धि और संख्या वृद्धि होगी। यह भी बतला आया है कि सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार पहली वृद्धि के हो जाने पर, यानी अनंत भाग वृद्धि सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार होती है, यानी हमने दो बार ऊ कहा था, हो जाने पर आगे की वृद्धि होती है, यानी वो एक कांडक प्रमाण होता है तो चार ऊ चार होते हैं, तथा संदृष्टि के द्वारा उसे समझा भी आए है, उसकी संदृष्टि भी हमने देखी थी, वो ऊ चार ऊ पांच वगैरह। और यह भी बतलाए है कि सबसे प्रथम अनंत भाग वृद्धि में अनंत का प्रमाण उतना ही लेना चाहिए जितना जीव राशि का प्रमाण है। अनंत वा भाग कौन से अनंत से भाग देना, तो जीव राशि वाले अनंत से। अतः जघन्य स्थान में जीव राशि का भाग देकर, जघन्य स्थान यानी अंतिम अनुभाग जो है, जीव राशि का भाग देकर जो लब्ध आए, जितनी वैल्यू आ जाएगी उसे उसी जघन्य स्थान में जोड़ने से, अनंत वा भाग जोड़ दिया तो कहेंगे अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि युक्त दूसरा अनुभाग स्थान होता है, पहला जघन्य वाला और ये 2 नंबर का हुआ। किंतु एक एक अनुभाग स्थान में अनेक स्पर्धक होते हैं, दूसरा स्थान तो बताया कि उसमें वृद्धि अनुभाग की वृद्धि कितनी हुई, तो अनंत वा भाग अनुभाग बढ़ गया, अनुभाग बढ़ गया परंतु एक एक स्थान में अनंत स्पर्धक होते हैं, यह पहले बतला चुके हैं, और वहां पर स्पर्धक रचना को बतलाना प्रधान लक्ष्य है, अतः उसे बतलाने के लिए हमें इसे फैलाना होगा, यह अनुभाग को किस तरह से फैलाना है। तथा जघन्य अनुभाग स्थान में अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत वे भाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं, ये तो पहले भी बता चुके, अतः उसकी स्पर्धक शलाका का प्रमाण, स्पर्धक शलाका यानी नंबर ऑफ स्पर्धक, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंत वे भाग प्रमाण होता है, अनंत होता है जघन्य स्थान में भी। देखो उतने ही स्पर्धक होते हैं, परंतु सब जगह कथन ये सामान्य से अभवेद के अनंत गुना, परंतु वो बहुत वेरिएशन है उसके। तो इस प्रमाण से, यानी जो नंबर ऑफ स्पर्धकों की हमने बात की, जघन्य अनुभाग स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक का प्रमाण आता है। एक स्पर्धक का प्रमाण कैसे निकालना, जो टोटल नंबर ऑफ, जो अंतिम जो अनुभाग हमने देखा था उसको नंबर ऑफ स्पर्धकों से भाग देंगे तो एक स्पर्धक का प्रमाण मिलेगा। जघन्य स्थान से दूसरे स्थान में ये स्पर्धक अधिक होते हैं, नंबर ऑफ स्पर्धक ज्यादा हो गए। इन बढ़े हुए स्पर्धकों को वृद्धि स्पर्धक या प्रक्षेप स्पर्धक कहते हैं, जो अभी यहाँ बारंबार शब्द आ गए। पहले स्थान से दूसरे स्थान में कुछ एक्स्ट्रा स्पर्धक ज्यादा हुए, क्योंकि अनुभाग अनंतवा भाग बढ़ा तो स्पर्धक भी कुछ बढ़े। जितने बढ़े उसको प्रक्षेप स्पर्धक या वृद्धि स्पर्धक, प्रक्षेप एन एडिशनल इतने स्पर्धक हुए। इन स्पर्धकों का जितना प्रमाण है उसका विरलन करो, और जघन्य स्थान से दूसरे अनुभाग स्थान में जितना अनुभाग अधिक है, अर्थात जघन्य स्थान में जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया, अनंतवा भाग अधिक किया ना, उस अनुभाग के समान भाग करके, क्योंकि जो अनंतवा भाग का जो प्रमाण आया था उसके समान भाग करके प्रत्येक प्रक्षेप स्पर्धक पर एक एक भाग दे दो। यानी जितना अनुभाग का डिफरेंस था, अनुभाग जितना बढ़ा उसको नंबर ऑफ स्पर्धकों से भाग दो तो एक एक स्पर्धक का प्रमाण आएगा। यानी प्रक्षेप स्पर्धक की एक एक की वैल्यू आ गई। यह एक एक भाग प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण होते, प्रक्षेप स्पर्धक का यह प्रमाण बताया जाता है। अर्थात इन भागों को जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर जोड़ने से, जघन्य स्थान का अंतिम स्पर्धक कहो या जघन्य स्थान कहो, अंतिम स्पर्धक उसकी वैल्यू वही है, उसके ऊपर जोड़ने से प्रक्षेप स्पर्धक या वृद्धि स्पर्धक का प्रमाण आता है। जैसे अभी उन्होंने जघन्य स्थान क्या माना है, 65,536 पनट्टी स्पंज। जघन्य स्थान की वैल्यू उन्होंने 65,536 मानी है। ये अनुभाग यहाँ जघन्य स्थान का अंतिम जो है, और जीव राशि का प्रमाण 4, जीव राशि 4 है तो इसको 4 से भाग देंगे तो हमें अनंतवा भाग मिला, वो उसी में ऐड करना है। तो देखो 65,536 है और जीव राशि का प्रमाण 4 है, 4 से 65,536 में भाग देने पर लब्ध आए जाए, इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो लब्ध आता है 16,384, बराबर है ना। यह प्रमाण अनेक स्पर्धकों में विभाजित है। ये जघन्य स्थान इतना था और इसमें ये एडिशनल हुआ, ये एडिशनल वैल्यू इतनी हुई 16,384, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। यहाँ की टोटल कितनी होगी ये दूसरे स्थान की, दिस प्लस दिस, पनट्ठी में ये अनंतवा भाग मिला दो तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वृद्धि का प्रमाण, अनुभाग में वृद्धि इतनी हुई और उसमें अनेक स्पर्धक बने तो ये जो वृद्धि है वो अनेक स्पर्धकों में बांट दिए गए। तो कहते कि फिर से इस 16,384 को उसमें जोड़ देने से 81,920 इनकी टोटल होती है, दिस प्लस दिस। पहला स्थान है 65,536, दूसरा स्थान है 81,920, तो कितनी वृद्धि हुई, तो कहते 16,384 की वृद्धि हुई। ख्याल में आई यहाँ तक बात, पर ये वृद्धि अनेक स्पर्धकों में बटी गई है ये कहना चाहते हैं। तो कहते यह दूसरा अनुभाग स्थान है, यह 16,384 प्रमाण अनेक स्पर्धकों में विभाजित है, उतना अनुभाग अनेक स्पर्धकों में विभाजित है और उन स्पर्धकों का प्रमाण 4 है। यहाँ चार स्पर्धक है, मान ले उन्होंने यहाँ स्पर्धक चार है। अब ये इतना बढ़ा हुआ अनुभाग है, कितना 16384, एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, तीन बार बढ़ा, चार बार बढ़कर इतना हुआ, यानी एक एक बार कितना बढ़ा डिवाइडेड बाय 4, 16384 को और चार से भाग दो।
नहीं, ये समझ में नहीं आया।
फिर से यहाँ अनुभाग की वृद्धि कितनी हुई, 16384, यहाँ स्पर्धक कितने बने, चार। तो एक एक स्पर्धक, एक प्रक्षेप स्पर्धक कहेंगे, तो एक एक स्पर्धक की वैल्यू कितनी है,
16384
यानी वृद्धि का प्रमाण,
स्पर्धक
डिवाइडेड बाय 4, 4096 आया। ये 4096 एक्स्ट्रा उसमें करना, हर एक की वैल्यू इतनी नहीं है, उसमें उतनी बढ़ोतरी हो गई, यानी 65536 में 4096 मिलाओ तो यहाँ का होगा स्पर्धक, उसमें और 4096 मिलाओ और 4096, चार बार मिला दो तो यहाँ की बात मिल जाएगी।
तो यहाँ पे स्पर्धकों का प्रमाण भी अनंत गुणा बढ़ता है। तो ये तो यही समझना पड़ेगा,
चिंता अंतर सेम होगा, परंतु इसके अंतर से, जघन्य स्थान के अंतर से यह अंतर अलग होगा, बस इतना ही है। एक पर्टिकुलर स्थान में अंतर समान है, वो अनंत भाग वृद्धि हुई या अनंत संख्यात भाग वृद्धि हुई, वो अंतर डिफरेंस हो गया।
ये अनंत भाग वृद्धि,
नहीं नहीं अभी देखते, वो स्थान कहाँ से पूरा ही, कहाँ से क्या कहना उसको, वो बात देखेंगे।
यहाँ पे अनंत भाग वृद्धि हुई तो स्पर्धकों का प्रमाण भी जीव राशि, अरे अभव्य अनंत गुणा और जीव राशि से
सामान्य कथन उतना ही होगा।
अच्छा, उतना ही होगा।
सामान्य से कथन अभव्य से अनंत गुणा है, उन्हें अनंतों में भी अनंत का डिफरेंस
होगा,
अनंत गुणा का डिफरेंस होगा। अभी तो हम इसको समझेंगे, पहले स्पर्धक किसको कहेंगे और अंतर किसको कहेंगे। देखो देखो, चार भाग समान करके उसके ऊपर देने से 4096 ये क्या है, प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण है, समझ में ना। प्रक्षेप स्पर्धक यानी उसमें एडिशनल, प्रक्षेप का ही अर्थ है एडिशनल, वृद्धि स्पर्धक का प्रमाण कितना है, 4096। इस प्रक्षेप स्पर्धक के प्रमाण 4096 को जघन्य स्थान 65536 में 4096 जोड़ दो, उनहत्तर 6632 जघन्य प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। ये वृद्धि का प्रमाण यहाँ है। अभी जघन्य स्पर्धक कितना होगा उसका, यहाँ पर दिस प्लस दिस 69632, ये इस स्पर्धक का प्रमाण इतना हुआ। दूसरे स्पर्धक का प्रमाण इसमें 4096 और बढ़ाओ तो उसकी वैल्यू उतनी होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, चार पहले स्पर्धक का प्रमाण, स्पर्धक ने वहां के अंतिम वर्गणा में इतने अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, यहाँ कितने थे 65536 थे, उसमें 4096 ये प्रक्षेप वृद्धि हुई ना, वृद्धि का प्रमाण बताया 4096, उसी को प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण कहते हैं। वो वृद्धि होकर यहाँ का अविभाग प्रतिच्छेद कितना हुआ, 65536 में 4096 मिलाए तो 69632 यहाँ का अनुभाग हुआ। यहाँ तक समझ में आई बात, उसमें 4096 और मिला दो तो दूसरे स्पर्धक का उसकी वैल्यू उतनी बढ़कर होगी, फिर तीसरे की, और चार बार बढ़ाएंगे तो वो 81000 वो फाइनल उसमें मिल जाएगा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 69000 जो हमने लिया वहाँ पे नीचे में जितने स्पर्धक थे उससे एडिशनल स्पर्धक का,
इसके ऊपर के स्पर्धक की बात है अभी। यहाँ पर ये चार स्पर्धक बने।
अच्छा,
अभी यहाँ नीचे के बने के नहीं बने के इसमें से इस वर्गणा से शुरू
के तो, हाँ, तो वहाँ पे के जो
वहीं से लेंगे शायद, अभी इसकी क्लैरिटी होगी।
नहीं तो वहाँ पे जो ऊपर स्पर्धक अलग बने तो वहाँ पे स्पर्धक अंतर दो प्रमाण से हो जाएगा।
वही तो अभी पढ़ेंगे आगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, एक ही स्थान में अलग अलग है क्या अंतर, उन्होंने बताया ना अवस्थित अंतर केवल जघन्य स्थान में होता, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसी की अभी तक तो क्लैरिटी हुई कि नहीं, किसको क्या कहना, और भी हो जाएगी, थोड़ी शांति रखो कल कल
समझ
परमाणु की कोई वैल्यू की संबंध नहीं है, वो अविभाग प्रतिच्छेद वो भी एक परमाणु का लेना है। वृद्धि कितनी हुई तो 4096, हर बार 4096 होगी, तो ओरिजिनल था उसमें उतने मिली, तो वहां का स्पर्धक की वैल्यू उतनी होगी, प्रक्षेप की वैल्यू इतनी, एडिशनल की वैल्यू 4096, पर उस स्पर्धक की वैल्यू कितनी, 69,632। समझ में आई ये बात? अब देखो आगे, इस जगन्य स्पर्धक का प्रमाण आया, इस प्रक्षेप जगन्य स्पर्धक के ऊपर, प्रक्षेप वाला है ना, एडिशनल है, दूसरे विरलन रूप पर, चार हमने चार का विरलन किया, चार स्पर्धक बने तो चार का विरलन किया, और टोटल अविभाग कितना बढ़ा था, 16,384 बढ़ा था, उसमें हमने एक समान करके दिया, तो यहाँ 4096, यहाँ 4096, यहाँ 4096, यहाँ 4096 मिले। पहले प्रक्षेप स्पर्धक को हमने डाला 16,384 में, तो 69,632 आ गए, यहाँ तक समझ में। अब ये दूसरा विरलन अंक के प्रति जो 4096 उसको और मिला दो उसमें, यही कह रहे। देखो, इस प्रक्षेप जगन्य स्पर्धक के ऊपर दूसरे विरलन रूप, दूसरा विरलन दूसरा एक एक पर स्थित 4096 को जोड़ देने से दूसरे प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। प्रक्षेप कितना करना वो बताया, वहां का प्रमाण कितना होगा, वो हमने 69632 देखा था, उसमें 4096 और मिला दो, वो दूसरे स्पर्धक उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार फिर क्या करना, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो सब मिला देने पर कितना हो जाएगा, वो 81920 इतना हो जाएगा। तो कहते इसी प्रकार विलयन प्रमाण जितने खंड है, एक एक करके उन सबको जोड़ देने पर 81920 दूसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण आता है। अंतिम स्पर्धक का प्रमाण कहो या दूसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण को बात एक ही है। इस दूसरे अनुभाग स्थान में, सबसे जघन्य अनुभाग स्थान में जीव राशि का भाग देने पर जो एक लब्ध आता है, उतना अनुभाग अधिक पाया जाता है। वो तो हमने पहले ये अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान हमने देखा था, क्योंकि हम मुनि की बात यहाँ देख रहे थे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हमें भी प्रश्न पड़ता है, एक कर्म परमाणु में स्थित अविभाग प्रतिच्छेदों का, उसी को अनुभाग स्थान कहा, उसी को वर्ग कहा, अविभाग प्रतिच्छेद को ही वर्ग कहा, उसी को वर्गणा कहा, उसी को स्पर्धक कहा, ये चारों संज्ञाएं कैसे घटित होती, प्रश्न तो यही है ना। हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अविभाग प्रतिच्छेद को ही आप वर्ग कह रहे, उसी को वर्गणा, उसी को स्पर्धक, उसी को अनुभाग स्थान पूरा बता रहे। समाधान, नहीं, क्योंकि एक ही जीव पदार्थ में, एक जीव में इंद्र और पुरंदर आदि संज्ञाएं पाई जाती है। पुरंदर समझते? इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं, नगर की रचना करते हैं ना, उसको पुरंदर कहते हैं। अलग अलग नाम होते कि नहीं, जैसे श्री कृष्ण है, उसके कितने नाम है, गिरिधर, मुरलीधर और क्या क्या होता है। अलग अलग, या नहीं नहीं, मुरारी का कुछ होता है ना, वो तो मुरारी नाम है, उसने वो राक्षस का नाश किया था। तो एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम देते हैं, उसी प्रकार उक्त संज्ञाएं भी जाननी चाहिए। विवक्षित जीव में स्थित पुद्गल परमाणुओं के अविभाग प्रतिच्छेदों से अधिक पने की विवक्षा करने पर, यानी किसी जीव में किसी एक स्थान में कितना था और किसी अन्य में अविभाग प्रतिच्छेद दूसरा अलग था, एक परमाणु में पाए जाने वाले इन अविभाग प्रतिच्छेदों की अनुभाग स्थान संज्ञा है। वहां तो अनुभाग विभक्ति यानी सत्ता की बात थी, पर स्थान समझने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंद का हो या सत्ता का हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शेष परमाणुओं के अविभाग प्रतिच्छेदों से सदृशता और असदृशता की विवक्षा न करके केवल उसी एक परमाणु की विवक्षा करने पर उसी की वर्ग संज्ञा है। क्या कहते हैं, एक परमाणु को ही वर्ग कहेंगे, उसके समान और भी परमाणु है फिर भी एक परमाणु को हम वर्ग कहेंगे क्योंकि उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है। आप कहेंगे पूरी वर्गना में भी सबका अविभाग प्रतिच्छेद मिलकर कहो, तो ऐसी बात नहीं। सदृश धन वालों की विवक्षा करने पर उसकी वर्गना संज्ञा है, ऐसा ही सदृश सब में होता है, सौ 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 सौ, तो उसी को वर्गना कहेंगे, पर अविभाग प्रतिच्छेद एक का ही गिनेंगे। प्रथम आदि स्पर्धक की अंतिम वर्गना से द्वितीय आदि स्पर्धक की, यहाँ लिखा है ना ऊपर क्या लिखा है, यानी वो अंतिम वर्गना से अंतिम वर्गना को कंपैरिजन करेंगे उसी को स्पर्धक कहेंगे। सर्वजीवी अनंत गुण अनंत विभाग परिच्छेद अंतरम कमेण गंतुन पुनः सर्वजीवी अनंत गुण परिच्छेद उल्लंघन पावग विवक्षाय तस्य फद्दये सन्नाति, यानी उतना अंतर जाके दूसरा स्पर्धक कहेंगे, एक स्पर्धक दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक। अतः सब जीव राशि से अनंत गुण अविभाग प्रतिच्छेदों के उल्लंघन की योग्यता की विवक्षा करने पर उसकी स्पर्धक संज्ञा है, क्योंकि वो एक स्पर्धक में वो तो बढ़ते हुए क्रम से बढ़ता है, फिर दूसरा में बीच में अंतर पड़ता है, फिर उसको तीसरा स्पर्धक शुरू होता है, इसलिए उसको स्पर्धक कह देते हैं। किसी वर्ग में इतना अनुभाग है, हमने जिसको 100, 101, 102, 103 वाला, अब उसके ऊपर 104 से लेकर 199 तो कोई ऐसी परमाणु ही नहीं है उतने, इनको उल्लंघन कर उसने 200 वाले परमाणु है, तो उल्लंघन कर हुआ तो ये 103 तक वाला वो सारा मिलकर एक स्पर्धक हुआ, यानी 103 वाला एक स्पर्धक हुआ, 203 वाला एक हुआ, 303 वाला एक हुआ, पूरे एक वर्ग को ही यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद को ही पूरा स्पर्धक कहने की पद्धति। क्योंकि उसमें प्रश्न उत्तर वहां पर भी बहुत चले कि एक ही परमाणु को अगर आप स्पर्धक कहेंगे तो एक वर्गणा में अनंत स्पर्धक हो जाएंगे, एक स्थान में इतने अनंत अनंत हो जाएंगे, तो उसकी चर्चा तो अभी हम छोड़ देते हैं, 372 पर फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझे भी ना हम क्या पढ़ रहे हैं अभी वो समझना कठिन है। देखो विशेषार्थ को पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार जघन्य स्थान की प्रदेश रचना कही, प्रदेश रचना की बात है अभी, जघन्य स्थान में क्या प्रदेश रचना की थी हमने, वर्गों की वर्गना होती है, दूसरे वर्गना में कुछ परमाणु चय से घटते हुए पाए जाते हैं, ऐसे अनंत स्पर्धक तैयार हुए, तो जो प्रदेश रचना कही है उसी प्रकार दूसरे अनुभाग स्थान की भी प्रदेश रचना समझनी चाहिए, यहाँ अपनी क्लैरिटी होगी। परंतु इतना विशेष है कि सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं को छोड़कर नवीन बंध को प्राप्त हुए परमाणुओं की प्रदेश रचना, जिन परमाणुओं में अनुभाग बढ़ाया गया है उन परमाणुओं के साथ कहनी चाहिए। वो तो ठीक है, हम सत्ता की बात नहीं, हम बंध की बात करें, सत्ता में क्या अनुभाग है उसके प्रदेश रचना की बात नहीं है, नया जो एक समय प्रबद्ध बंधा है उसकी बात है। अब उसमें क्या कहते हैं, जिन परमाणुओं में अनुभाग बढ़ाया गया है उन परमाणुओं के साथ कहनी चाहिए। अभी हम
जिन परमाणुओं में अनुभाग बढ़ाया गया है तो वहाँ पे जो नया बंध हुआ वहाँ पे पूर्व में जो सत्ता में थे वो भी वो टाइप के भी परमाणु हो गए, नहीं क्यों बंद हुआ।
देखो देखो जय धोला में बात अलग है, वहाँ सत्ता की बात है, अब यहाँ बंद का हमारा बंद का ही प्रकरण है, यहाँ तो समझना आसान है, यानी पहले बंधे हुए है या नहीं है उसकी हमें कोई चिंता ही नहीं है, एक समय प्रबद्ध की रचना कैसी होती उसकी चर्चा है, समझ में। अभी सुनो तो देखो, बंध को प्राप्त हुई तो उसकी निश्चय रचना कैसी, वो तो गोपुच्छ के आकार बन जाती है। हाँ, अभी दूसरे अनुभाग स्थान के नवक बंध की प्रदेश रचना को कहते, यही तो अपना विषय है ना।
हाँ।
अन्य अनुभाग स्थान में प्रदेशों की रचना कैसी होती है, समय प्रबद्ध में जघन्य अनुभाग स्थान से अधिक अनुभाग वाले जितने परमाणु हो उनको पृथक स्थापित करो। अभी हमने देखा था हमारे उसमें जो पहला जघन्य स्थान था उसके अधिक जो अनुभाग वाले परमाणु उसको अलग से ले लो, उसको सोचो केवल। तो कहते कि उनको पृथक स्थापित करो और जघन्य स्थान के समान अनुभाग वाले शेष सब परमाणुओं को लेकर उनकी रचना करो।
तो यहाँ पे दो रचना बता दी,
मैंने वही बताया था कि जघन्य स्थान से उसके जघन्य स्थान के समान उसकी रचना करो और जो शेष अधिक अनुभाग वाले परमाणु उसको अलग अलग उसके ऊपर रचना करो। एक वर्गणा में कितने उसका डिफरेंस होने ही वाला है उसकी चिंता छोड़ दो, अनुभाग की अपेक्षा और वर्गणा इस तरह से रचना करो। रचना करने पर वे सब परमाणु अभी जितने ऊपर है उसकी रचना हमको कंसीडर करनी है। पहली जो प्रदेशों की रचना उसी गोपुच्छाकार अनुभाग से हो गई है। तो कहते वे सब परमाणु जघन्य अनुभाग स्थान की जघन्य वर्गणा से लेकर उसी की उत्कृष्ट वर्गणा पर्यंत स्थित हो जाते हैं। कौन से? जो पूर्व के समान जो होते हैं वैसे। उसके बाद अधिक अनुभाग वाले परमाणुओं को लो, ख्याल में आई बात, उनका भी प्रमाण अनंत है। उनमें से जघन्य प्रक्षेप स्पर्धक प्रमाण परमाणुओं को लेकर, अभी हमने जघन्य प्रक्षेप स्पर्धक की वैल्यू अभी यही इसमें हमने 4096 मानी थी, तो 4096 प्रमाण यानी उस स्पर्धक में जितने प्रदेशों के प्रमाण होगा, अभी वो प्रदेशों का प्रमाण निकालना हमारा यहाँ का हेतु नहीं है, जो उसकी रचना में गणित में आता है उतने परमाणुओं को लेकर, यानी 4096 जो हमने देखा था एडिशनल जो हुई है, तो प्रतिवर्गणा में जो कुछ जैसी रचना होगी वो वहां प्रदेशों की अपेक्षा उसकी रचना करना। जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर उनकी रचना करो। ऐसा करने से प्रथम प्रक्षेप स्पर्धक उत्पन्न होता है। यहाँ तो समझ में आई, हमने उसके अंतिम वैल्यू कितनी देखी थी 69632, वो 65536 से इतना बढ़ा, परंतु उसमें प्रदेश की अपेक्षा पूरी रचना वो वर्गणा वगैरह वैसी हो जाएगी। पुनः उनमें से द्वितीय स्पर्धक प्रमाण परमाणुओं को प्रथम प्रक्षेप स्पर्धक के ऊपर अंतराल देकर स्थापित करने से, वो बीच में जो यथायोग्य अंतराल है उसको देकर वो स्थापित कर द्वितीय स्पर्धक उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुनः पुनः परमाणुओं को लेकर तब तक स्पर्धक रचना करनी चाहिए जब तक पृथक स्थापित किए गए परमाणु समाप्त हो। पहले हमने जघन्य स्थान के समान वहां तक जो स्पर्धक रचना होती थी उतने परमाणु वहां दिए, बाकी जो अनंत है उसके ऊपर के स्पर्धकों की रचना की, प्रदेश कितने दिए उसकी उसका गणित अलग है। यहाँ तो हम जो बता रहे हैं वो अनुभाग की अपेक्षा बता रहे, इसी को उन्होंने खोल कर बताया कि क्या होना चाहिए। इस प्रकार दूसरे अनुभाग स्थान की स्पर्धक रचना जाननी चाहिए। यह पूरा स्थान कौन सा है? मोहिनी में अनंत भाग वृद्धि वाला, यह अनंत भाग वृद्धि युक्त प्रथम स्थान है। ये तो समझ में, यह अनुभाग स्थान की रचना कैसे की, अर्थात जघन्य अनुभाग स्थान को जो हमने 65536 माना था सर्व जीव राशि से भाजित करके चार से भाग दिया, जो लब्ध आवे 4096 उतना अधिक है। सोलह हजार तीन सौ चौरासी अधिक है टोटल इस दूसरे अनुभाग स्थान को, अभी उसके फिर दोबारा अनंत भाग वृद्धि होगी। इस दूसरे अनुभाग स्थान को सर्व जीव राशि से भाग करके भाजित करके जो लब्ध आवे उसे दूसरे अनुभाग स्थान में जोड़ देने से तीसरा अनुभाग स्थान होता है। अभी जो हाँ वो हमने देखा था 81920, इसको फिर चार से भाग दो, जीव राशि तो उतनी रहने वाली है, जिस संख्या से भाग देना है अनंत से वो तो उतनी ही है और ऊपर की वैल्यू बढ़ी है, तो क्या होगा वो अनंतवा भाग जो बढ़ागा वो अधिक होगा। जैसे अंक संदृष्टि से दूसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण 81920 आया था, उसमें जीव राशि के कल्पित प्रमाण चार से भाग देकर 20480 आया को जोड़ देने से तीसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण, क्योंकि उसमें वो जोड़ देना है, हाँ वो तीसरा आता है 102,400 नहीं देखो देखो पहले 65,000 वो था उसमें टोटल
वृद्धि हो गई तो
उसमें 16,384 मिले थे क्योंकि इसका चौथा भाग 16,384 था पर 81,920 का चौथा भाग वो 20,480 है वो उसमें मिला दिया वो तो 102,400 वो पद्धति वही है उतने मिले उसमें यह अनंत भाग वृद्धि युक्त दूसरा स्थान है पहले के स्थान के अंतर से इस स्थान का अंतर अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है पहले का अंतर कितना था 16,384 स्थान का अंतर 16,384 यहाँ का अंतर 20,480 अनंतवा भाग वो भी बड़ा ना टोटल हाँ
20,000 आ गया ना
तो 20,480 आया 81920 डिवाइडेड बाय 4 चार दुनी 8 चार शून्य शून्य चार चौक 16 32 रहेगी ना 4 8 32 चार शून्य शून्य हाँ बढ़ेगी ना हाँ देखो हाँ देखो अभी 16 क्या हुए हाँ अभी तो उन्होंने मैंने पहले अनंत भाग वृद्धि में 4 बढ़े थे अभी क्या बढ़ते बताएंगे यहाँ पर देखो अंतर तो समझ में अंतर बढ़ गया यानी इसका अंतर भी अंतर यानी अनुभाग का अंतर भी अनंत भाग अधिक आया अर्थात पहले के स्थान का अंतर 16,384 है और इस स्थान का अंतर 20,480 है अतः पहले के स्थान के अंतर से यदि अनंत का प्रमाण 4 कल्पना किया जाए तो इस स्थान का अंतर अनंतवे भाग प्रमाण अधिक होता है वही तो हमने देखा था ना 81,000 उसको हमने 4 का भाग देकर उसमें मिलाया तथा दूसरे अभी ये प्रक्षेप स्पर्धक की बात है दूसरे अनुभाग स्थान के प्रक्षेप स्पर्धक के अंतर से वहां अंतर कितना था 4,096 था इस तीसरे अनुभाग स्थान के प्रक्षेप स्पर्धक का अंतर भी अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है क्योंकि पहले की विभज्यमान राशि से जिस संख्या को हम भाग देते थे विभज्यमान राशि से इस स्थान की विभज्य राशि अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है देखो क्या कहते जिसको भाग देना है वो राशि बड़ी है आप कहेंगे वो स्पर्धक भी बढ़ेंगे तो क्या होगा अर्थात दूसरे अनुभाग स्थान की विभक्त की जाने वाली यानी भाग देने वाली राशि का प्रमाण अंक संदृष्टि से 81,920 है और तीसरे स्थान को जिसको हम भाग दे रहे हैं वो राशि 1,02,400 है अतः उससे इसका प्रमाण अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है वो तो हमने देखा था नहीं समझे 81,000 जो हमने देखा था 920 उसका चौथा भाग 20,480 वो उसी में मिला दो तो 1,02,000 यानी 1,24,000 आता है तीसरे का अनुभाग स्थान का प्रमाण तथा प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं दोनों स्थानों की बराबर बराबर अगर वो भी बढ़ जावे तो ये वो अनंतवा भाग बढ़ा ऐसा नहीं कहेंगे हम जहाँ अनंत भाग वृद्धि है जहाँ अनंत भाग वृद्धि है एक बार जघन्य से वृद्धि का प्रमाण हुआ तो प्रक्षेप शलाका बढ़ी नंबर ऑफ शलाकाएं बढ़ी जो कुछ हुआ तो जब तक अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि है तब तक अनुभाग में वृद्धि हो जाएगी वहां की प्रक्षेप स्पर्धक शलाका वही है परंतु जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी वहाँ उसका प्रमाण अलग होगा
तो यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि सूचक गुण के
हाँ यहाँ 4 ही है क्योंकि वृद्धि हाँ क्योंकि पहले कितना बढ़ा टोटल 16,384 बढ़ा और उसको 4 का ही भाग दिया फिर कितना बढ़ा तो 20,000 इतना बढ़ा 480 उसको भी 4 का ही भाग दिया तभी तो प्रक्षेप स्पर्धक की वैल्यू बढ़ेगी इसलिए अंतर बदल गया
सर यहाँ पे एक सगुणी वृद्धि हो जाएगी
अभी एक षडगुणी छोड़ दो, एक अनंत भाग वृद्धि देखो पहले
मैं आगे चला गया वहाँ पे
आप बहुत आगे जंप करते
हैं, समान हो जाएगी
उसको बहुत टाइम है अनंत भाग वृद्धि पहले असंख्यात बार होने दो, अभी तो दूसरी बार हो रही है। देखो इसलिए दूसरे अनुभाग स्थान के प्रक्षेप स्पर्धक के अंदर से, तो अंतर समझ में ना, पहली बार वो 4096 अंतर था, अभी जो 20480 उसको फिर चार का भाग दे दो, हाँ तो 4096 के बदले 5120 आ जाएगा। प्रक्षेप अंतर से तीसरे अनुभाग के प्रक्षेप स्पर्धक का अंतर भी अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है, 4096 का अनंतवा भाग उसमें मिला दो, टोटल अनुभाग में इतना वृद्धि हो गई तो उसके प्रक्षेप स्पर्धक में अंतर में वृद्धि हुई, नंबर ऑफ स्पर्धक उतने ही रहे, जहां तक अनंत भाग वृद्धि होगी तो स्पर्धक शाला का उतनी होगी, ख्याल में आई ये बात, नहीं तो केवल अनुभाग में वृद्धि हो और प्रक्षेप स्पर्धक भी बढ़ेंगे तो उतना
नहीं, वो तो समान समान होता जाए, ये तो समान
ये अंतर का प्रमाण समझ, अंतर किसको कहना,
अंतर का प्रमाण
जितनी नीचे के स्थान में जितनी वृद्धि होगी पहला स्पर्धक, पहले स्पर्क में उतनी वृद्धि होकर दूसरा स्पर्धक, दूसरे में उतनी वृद्धि, तीसरा स्पर्धक शलाका सेम रहे, शलाका सेम रहे जब तक अनंत भाग वृद्धि होगी,
अंतर बढ़ता जाएगा,
हाँ वो अंतर अनंतर अनंत भाग बढ़ा तो स्पर्धक का अंतर, देखो अनुभाग स्थान का अंतर बढ़ा और नंबर ऑफ स्पर्धक उतने ही रहे तो क्या हुआ, स्पर्धक का अंतर भी बढ़ा, जैसे अनुभाग स्थान का अंतर बढ़ा और स्पर्धक शलाकाएं उतनी रही तो स्पर्धक का अंतर भी बढ़ा, पहले हमने 4096 माना, अभी वो 5000 कितना हो जाता है, 4 × 25 5000 नहीं 20480 उसको भी 4 से भागना, 4 × 25 400 4 × 9 = 45 431 5096 आ जाएगा,
तो ये स्पर्धक अंतर आ गया ना,
स्पर्धक हाँ स्पर्धक अंतर भी उतना बढ़ेगा कि नहीं, 4 मैंने 4 5 का किया, 4 × 25 4 × 1 = 4 बराबर 4 × 2 = 8 तो देखो ये कितना ऐड हुआ, ये भी इस प्रमाण से निकाल सकते हैं, इसको 4 से भाग दो, 4096 को भाग दिया तो 4 × 4 = 4 400 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16 7 × 4 = 10 = 0 9 × 3 = 12 = 2 1 × 1 और 4 × 1 = 5 वही है ना, 4096 को 4 का भाग दो तो 1024 आए, उसमें मिला दो तो 5120 आ गए, यहाँ डायरेक्ट हमने वहाँ का अनुभाग का डिफरेंस जो देखा था उसको 4 का भाग दो, बात एक ही है, उसमें अनंत भाग की वृद्धि होगी, इसमें भी अनंत भाग की वृद्धि होगी, देखो दूसरे से तीसरे नंबर ऑफ स्पर्धक उतने ही रहे, प्रक्षेप स्पर्धक वृद्धि स्पर्धक की बात है ना, कितने अधिक बढ़े दूसरे, नहीं ऐसा नहीं है, उसके ऊपर कितने हुए, उसके ऊपर और 4 हुए ना, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये पूरा दूसरा स्थान यहाँ पर, तीसरा स्थान अलग ही सोचना है, उसमें कितना अनुभाग बढ़ा तो और इतना बढ़ा, किससे ज्यादा बढ़ा, यानी 8920 तक तो वैसे स्पर्धक रचना करेंगे हम, उसके ऊपर कितने बढ़े उसकी बात है, हाँ अनंत भाग वृद्धि हो तो वृद्धि का प्रमाण अलग हो जाए
तो
स्पर्धक शाला का भी अलग हो जाएगी, यहाँ केवल अनंत भाग वृद्धि की बात चल रही है, अभी यहाँ कुछ और बताते तो देखेंगे, अभी है 5-10 मिनट, यहाँ लिखा ना प्रक्षेप स्पर्धा का शलाकाएं दोनों स्थानों के बराबर है, क्योंकि दोनों ही स्थान अनंत भाग वृद्धि वाले हैं, क्योंकि सभी अनंत भाग वृद्धि युक्त स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं परस्पर समान है, ये कितना क्लियर लिख दिया है, जहां जहां अनंत भाग वृद्धि होगी स्पर्धक शलाका उतनी है। असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं परस्पर समान है, उनके आपस में समान है। संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं भी परस्पर में समान है, अपनी अपनी समान है। इसी प्रकार वो सब में लगाना, संख्यात गुण वृद्धि में वगैरह वगैरह। यदि स्पर्धक शलाकाओं को परस्पर में समान न माना जाएगा तो अनंत वे भाग प्रमाण अधिकपना नहीं बन सकेगा। जैसे हमने देखा था वहां कि चार के बदले प्रक्षेप स्पर्धक भी पांच बन जाए तो क्या होगा, बढ़ोतरी 20,480 की हुई थी, उसको पांच से भाग दो तो पांच चौक 20 कम हो जाएगी ना, ये कहते उसको।
तो प्रति अनंत भाग वृद्धि में प्रक्षेप शलाका समान है परंतु अंतर बढ़ता जाता है, यही समझना।
अनुभाग का अंतर बढ़ेगा, हाँ। स्पर्धा का अंतर भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना टोटल अनुभाग बढ़ा है उसको नंबर ऑफ वृद्धि स्पर्धकों से भाग देते हैं तो स्पर्धा का अंतर मिलता है। तो जैसे टोटल अनुभाग बढ़ा तो स्पर्धा का अंतर भी बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पर्धक तो उतने ही उतने मान लिए हमने। उसमें अंतर हो जाएगा, देखो देखो अभी उसका कितना होता है, ज्यादा होते का कम होते है, उसकी शायद वो भी बढ़ेगी ना। हाँ, वो आपस में असंख्यात वृद्धि के सब आपस में समय, नहीं 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 वो तो वहां डिफरेंस हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा ना, सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं, सजाती प्रक्षेपों की स्पर्धक शला विशिष्ट वृद्धि, अनंतवा भाग है कि असंख्यातवा भाग है कि संख्यातवा भाग है, वो विशिष्ट वृद्धि के लिए वो वृद्धि स्पर्धक जितनी है नंबर ऑफ शलाका जिसको कहेंगे वो सेम है, ये कहना चाहते हैं।
तो यहाँ पे जो जीवराशि में जो सद्गुणी वृद्धि आनी होती है वहाँ पे
जीवराशि में कहाँ होती है,
नहीं अरे अपने परिणामों में असंख्यात लोक प्रमाण ये जो वृद्धि आनी होती है संस्थान गुणी, वहाँ पे प्रक्षेप शलाका है वो छह टाइप की होगी।
हाँ।
बराबर है ना,
बराबर। देखो अभी यहाँ जहाँ अनंत भाग वृद्धि हुई ना वहाँ जो प्रक्षेप शलाका थी, मैं बीच का छोड़कर पढ़ रही हूँ, तो अंगुल के असंख्यात वे भाग बार ऐसे अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि यानी अनुभाग स्थान भी अनंत भाग प्रमाण बढ़ा और स्पर्धकों का अंतर भी वैसा ऐसा बढ़ा, परंतु नंबर ऑफ स्पर्धक उतने ही रहे, एक्स्ट्रा एडिशनल स्पर्धक उतने ही रहे। अब कहते हैं जब कांडक के बाद क्या होगा, अंतिम अनंत भाग वृद्धि के बाद असंख्यात लोक का भाग दे, पहले जीव राशि वाले अनंत का भाग देते थे, अब हाँ अब असंख्यात लोक का भाग देकर जो एक भाग की वैल्यू आ गई उसमें बढ़ गई, यानी असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ प्रक्षेप भी कितने हो जाएंगे, तो प्रक्षेप स्पर्धकों की शलाकाओं से इस स्थान की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं असंख्यात वे भाग प्रमाण अधिक है, एक्स्ट्रा एडिशनल जो होगी वो भी यहाँ डिफरेंस होगा। जब तक अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि तो स्पर्धक जो उनका प्रमाण था ना शलाकाओं का,
एक्स्ट्रा स्पर्धकों का प्रमाण अनंत वे भाग प्रमाण था
वो तो सेम था,
शलाका खाली
शलाका सेम थी। जब तक अनंत भाग वृद्धि चल रही थी तो एडिशनल स्पर्धकों का प्रमाण सेम था। अब क्या कह रहे, जब पहली बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई एक बार तो उस समय यानी वो अनुभाग कितना बढ़ा, असंख्यात भाग बढ़ा और स्पर्धक शलाकाएं भी असंख्यात पे भाग बढ़ी,
स्पर्धक शलाकाएं,
समझ में आई बात। हाँ
असंख्यात भाग वृद्धि जितनी बार हुई इतनी बार प्रत्येक सलाब का भी बढ़ती
असंख्यात भाग वृद्धि रूप स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं नीचे के स्थानों की स्पर्धक प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से असंख्यात वे भाग प्रमाण अधिक है
वो अनंत भाग वृद्धि हो गई थी
संख्यात भाग वृद्धि को लिए हुए स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं नीचे के स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से संख्यात वे भाग प्रमाण है जहाँ संख्यात गुण है वो संख्यात गुणी है जहाँ असंख्यात गुण है वो स्पर्धक शलाकाएं भी असंख्यात गुणी है और जहाँ अनंत गुणी वृद्धि स्थानों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं अनंत गुणी है अभी जो ज्ञानावरण में उल्टा लगा लो कल हमने पढ़ा था ये सब कि स्पर्धक प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं भी अनंत गुणी हो जाती है उसको अनंत गुणी यानी जीव राशि से अनंत गुणी हो जाती है असंख्यातवा भाग अधिक असंख्यातवा भाग अधिक हो जाता है उसमें अभी नए जो एक्स्ट्रा हुए प्रक्षेप करते थे एक्स्ट्रा वहां तक तो उतने ही रहे उसके ऊपर जो परमाणु की वहां तक रचना वैसी हुई जो पूर्व स्थान के जैसे ऊपर एक्स्ट्रा कितने हुए उसका बात है इसलिए वो कहते अवस्थित अंतर नहीं होता ये जो बात आई थी अंतर डिफरेंस होगा ना नया बनेगा उसमें अभी यहाँ तक तो कुछ खुला है अभी आगे कुछ देखेंगे हा? कल से थोड़ा समझेगा
एक दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के टोटल स्पर्धकों का प्रमाण जीव अभव्य से अनंत गुणा और जी राशि के सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण तो यह अनंत गुणी प्रक्षेप सलाह का वो कैसे बढ़ेगी
अनंत गुणी होकर भी अभव्यों से अनंत गुणा ही कहेंगे और वो सिद्धों के अनंत विभाग ही रहेंगे क्योंकि वो अनंत का अनंतपना ख्याल में नहीं आता ना अब केवल ज्ञान होने पर कुछ तो बाकी रखो जावानी हे ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देख हो लो मैं